Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो कभी लड़ा ही नहीं। जिंदगी भले कितने भी संघर्ष आप तक पहुंचा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जानने की जरूरत है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आप खुद हैं। आप जिम्मेवार हैं कि किस तरह से आप उन मुश्किलों से बाहर निकलकर एक बेहतरीन जिंदगी की ओर आगे बढ़ सके। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच
डॉक्टर साहब। कुछ रिश्तों की मीठी टकरार, जो कि मैं कहूँगी क्योंकि वो मीठी है, क्योंकि रिलेशनशिप्स अपने आप में बहुत ज़्यादा मिठास से भरे होते हैं, लेकिन यूथ्स को भी कई सारी कड़वाहट जो थोड़ी बहुत होती है रिश्तों के अंदर में, वो भी महसूस होने लगी है आजकल। हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है कि किस तरह से वो अपने रिश्तों को बेहतरीन बनाने में अपने आप की और विश्व की मदद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं
जी।
क्या हम अपने जीवन में हर संबंध का आनंद ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे? तो आइए, आज हम अपने बहुत सारे दोस्तों से मिल रहे हैं जो हमारे साथ इसमें सेट पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या विचार है अपने जीवन में संबंधों को निभाने के बारे में। आप अपने जीवन में कौन से संबंध को सबसे अधिक अहमियत देते हो, जिससे आपको सबसे अधिक खुशी और आनंद मिलता है?
मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा।
मेरी मदर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ एज ए फ्रेंड भी डील करते हैं और मैं हर अपनी बात उनसे शेयर करती हूँ।
मेरे पापा, क्योंकि वो अच्छे से गाइडेंस देते हैं।
फ्रेंड्स का रिलेशन सबसे अच्छा, क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती हैं कि हम मम्मी पापा से भी शेयर नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी आ जाता है। मम्मी पापा कई बार होते हैं कि नाइट आउट भी देते हैं कि बाहर जाएं, शेयर मस्ती कर सकें कुछ भी।
मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंस मेरे फ्रेंड्स से को, अभी मेरी एंगेजमेंट हो गई है तो नवंबर में मेरी मैरिज है, तो अभी मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो मेरे फ्रेंड्स से।
मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन मेरे भाई का है।
जो मम्मी पापा से बात शेयर नहीं कर सकते, वो भाई से कर सकते हैं।
जब अपने रिलेशंस को निभाते हुए अगर मान लिया आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कभी टेंशन क्रिएट होता है इन संबंधों में, तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं?
अपना कोई जो बड़ा भाई बहन है जो अच्छे से समझता हो, या मतलब कि जो हमें अच्छे सजेस्ट करता हो अपने बहन से, या कोई बड़ा भाई है, या किसी ऐसे नॉन पर्सन से जैसे दादाजी हैं दादी जी हैं, किसी से पूछ के बता के कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देते
हैं। मिस अंडरस्टैंडिंग होनी आम बात है, एक दूसरे में हो जाती है, लेकिन जब कुछ भी लव वगैरह कुछ भी हो, ट्रस्ट एक दूसरे पे हैगा तो मतलब हो जाते हैं फिर भी कन्फ्लिक्ट सोल्व। आराम से बाहर घुमाओ कुछ भी, माउंटेन से कैसे भी टाइम पास करो तो हो जाता।
मदर को, मम्मा को जाके सॉरी बोल देती हूँ, उनके साथ बस बैठ जाती हूँ, उनको हक कर लेती हूँ, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ।
एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की को जान के, हम जिसकी गलती है पहले वो समझेगा।
डॉक्टर साहब, रिश्तों की बात हम कर रहे हैं, वैसे तो हम आज तक ये मानते आए कि रिश्ते तो हमें ज़िंदगी खुद देती है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर वो व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आया है, उसके आने का एक कारण है। वो आपको कुछ सिखा के जाता है और आप उनसे कुछ सीख कर और आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में हर रिश्ते के अपने अपने मायने हैं, लेकिन यूथ्स जो कहा जाता है, वो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते की ओर आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो उनके कंपेनियन हो, चाहे पेरेंट्स हो, या फिर उनके रिलेशनशिप विथ हिज और हर हस्बैंड और वाइफ। तो कहीं ना कहीं इतने सारे रिश्तों के बीच में उनका खुद का एग्जिस्टेंस कहाँ है, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है कि किस तरह से सभी रिलेशनशिप को बैलेंस करके कोई भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़कर एक बेहतर ज़िंदगी जी सके?
एक्चुअली आपने जो बात कही कि कई तरह के रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, इन सब में एक और रिश्ता है जो कि यूथ के थोड़ी देर बाद शुरू होता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्चुअली मैं कहूँ तो आज के दिन में समय देता है, और वो है कि रिश्ते जो कि हम काम पर बनाते हैं,
करेक्ट,
या काम की वजह से जो रिश्ते बनते हैं।
बिल्कुल।
पर अगर उससे पहले देखें तो जो यूथ उन रिश्तों को बना रहा है
जी,
हर रिश्ते में वही तो इम्पोर्टेंट है और वही डिसाइड करता है कि उस रिश्ते को कहाँ तक जाना।
करेक्ट।
आपके पास चॉइसेस है, पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ एंगेज नहीं करते तो वो सिर्फ हैं।
करेक्ट।
अगर आप दोस्तों के साथ टाइम नहीं फिक्स करते तो वो कहने को दोस्त हैं लेकिन वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पास नहीं है।
करेक्ट।
अगर आपने कोई व्यक्ति को अपना कंपेनियन बनाया है और उसके साथ आप समय बिता रहे हैं तो वो आपके लिए है, और आप उसे कितने अच्छे प्रकार से इन सबको चलाते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि पहला, आप उन रिश्तों से चाहते क्या है। दूसरा, आपकी मन स्थिति क्या है।
करेक्ट।
तीसरा, आप उसके लिए समय और रिसोर्सेस क्या देते हैं। और चौथा, अगर उन रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं उनके साथ आप डील कैसे करते हैं।
करेक्ट।
क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि वो रिश्ते कितने परमानेंट रहेंगे या शायद अगर थोड़े से कच्चे होंगे तो टूट जाएंगे। कोई रिश्ता परमानेंट नहीं है।
करेक्ट।
और कोई रिश्ता अगर आप परमानेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से उसे रिगार्ड भी देना पड़ेगा, और दूसरे को ये भी बताना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वो व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ चलते फिरते हेलो हाउ आर यू वो वाले रिश्ते तो हैं जो वो चलते रहते हैं। कई बार लोग बहुत अच्छा मुखौटा भी लगा लेते हैं, दूसरे को ऐसे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी नज़र में वो नहीं है। हर रिश्ता आपको एक मीनिंग दे के जाना चाहिए, तभी वो रिश्ते सशक्त भी होंगे, तभी वो आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी दे कर जाएंगे। और इसके लिए एक बात का हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि आज अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो कल वो ठीक हो भी सकती है, लेकिन उसे ठीक ले जाने की दिशा जो है वो दो व्यक्ति मिलकर देंगे।
साहब, गलती उनकी नहीं है, प्रॉब्लम इधर है कि वो जो देख रहे हैं आसपास, जिस तरह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसा वो चाहते हैं, आसपास के लोगों को जब वो देखते हैं तो उन्हें देख करके उन्हें लगता है कि पता नहीं कैसी आगे की ज़िंदगी है, इससे बेटर है कि हम फ्रेंड्स ही बनकर रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये जो एक फर्दर रिलेशनशिप की बात होती है कि यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट, मैरिड मतलब इट्स अ कंप्लीट कमिटमेंट, यू आर फॉर एवर टुगेदर, तो कहीं ना कहीं वो जो एक डिसीजन होता है ये बहुत डरते हैं लोग, क्योंकि देख रहे हैं कि दो साल बाद किसी का डिवोर्स हो रहा है, शायद किसी किसी का एक एक महीने में भी डिवोर्स हो रहा है, आसपास ये सुनते आ रहे हैं हम, तो वो डर जो है वो मन में घर कर गया है कहीं ना कहीं।
देखिए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी कि नहीं
जी,
और बढ़ने के बाद सुखद होगी कि नहीं, कितनी परमानेंट रहेगी या नहीं, ये हर रिलेशनशिप अलग है।
करेक्ट।
अगर किसी दो व्यक्तियों की आपस में नहीं चली और चाहे वो आपका क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो शायद दोनों ने और शायद दोनों में से एक ने उतना नहीं दिया उस रिलेशनशिप को जितना वो दे सकते थे। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो हम देख रहे हैं उसके टूटने के कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट दी स्मॉल लिटिल थिंग्स एड अप टू मेक अप अ बिग प्रॉब्लम।
करेक्ट।
चाहे उसमें थोड़ी सी ईगो हो किसी की भी, चाहे उसमें बाहर वाले आ जाते हों, चाहे इन लॉज हैं, चाहे दूसरे मित्र हैं, या कभी कभी कोई थर्ड व्यक्ति जिसको कि हम मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं कि शायद वो व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मुझसे, या जो जीवन के अलग अलग हिस्से हैं बैलेंस होने के, उसमें किसी को लगता है कि काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ टीवी देख रहा है मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा।
करेक्ट।
या कई बार क्योंकि दोनों के प्रोफेशंस अलग हैं, उनकी डिमांड्स अलग हैं, और आज के समय में लड़कियां भी उतना ही काम कर रही हैं जितना कि लड़के, उस वजह से भी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर एक स्टेज के बाद और ख़ास तौर पर डर डर के आप किसी भी रिश्ते को और सिर्फ कंपेनियनशिप का नहीं और किसी रिश्ते को भी आगे नहीं ले जाते ये सोच के कि मैं हर्ट हो जाऊंगा या ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, तो आप उसे पूरी तरह से जी भी तो नहीं रहे।
करेक्ट।
आप सिर्फ मेजर्ड तरीके से जी रहे हैं कि मैं 10% दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ दूसरा 10% दे रहा है कि नहीं, और अगर आपको लगा नहीं दिया तो आपने वो 10% भी विड्रॉ किया। तो इस हालात में कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रिलेशनशिप का मीनिंग है गिविंग अनकंडीशनली। और अगर आप अनकंडीशनली दे रहे हैं और उसी समय उतना या उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रिलेशनशिप्स आगे बढ़ पाती हैं। हर मैरिज इंसिडेंटली टूटती नहीं है,
बिल्कुल
हर रिलेशनशिप जाके खराब नहीं होती है, लेकिन उदाहरण उनके दिए जाते हैं जो खराब हो गई, उन्हीं को देख के ज़्यादा डर लगता है।
करेक्ट।
और अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर कुछ देर के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगी।
दिस इज सो ट्रू डॉक्टर साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं रिलेशनशिप की ओर ज़्यादा देखते हैं जो कि नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आई है, ना कि जो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आई है। आज अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें या अपने पेरेंट्स की ही बात करें, उन लोगों को एक दूसरे के साथ बांध दिया गया जबकि उन्होंने शायद एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी, उनके साथ में ज़िंदगी वो बिता देते हैं, भले कितने भी टकराव होते हैं लेकिन एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो अनसर्टनिटी जो है, वो डर जो है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा लव मैरिजेस हो रही हैं और लव मैरिजेस में भी ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो आपको एक मौका दिया जाता है एक साथी को चुनने का, लेकिन फिर भी वो गलत क्यों होता जा रहा है? और पहले के ज़माने में तो बिना देखे एक दूसरे को वो पूरे ज़िंदगी साथ बिता दिया करते थे, तो इन दोनों के बीच में कहाँ गलती हो रही है जिसके वजह से रिश्ते टूट रहे हैं?
हम एक रिश्ते को कितना लॉन्ग टर्म का सोचते हैं वो डिसाइड करता है कि हम उसमें कितना इन्वेस्ट करते
हैं। ओके।
एक बहुत क्रूड सा एग्जांपल देता हूँ
जी।
मान लीजिए हमने एक फ्लैट खरीदा ये सोच के कि 2 साल में इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी
जी।
तो उसके बाद उसको बेच दिया जाएगा, वर्सेस कि हमने एक फ्लैट खरीदा
जी
जिसके अंदर हम रहना चाहते हैं। दोनों को देखने के नजरिए में फर्क होगा। पहले वाला फ्लैट जिसमें कि मैं सोच रहा हूँ कि अब जैसे ही कीमतें बढ़ी तो उसको बेच देंगे, आप सिर्फ उसको एक कमर्शियल रूप में देखेंगे।
करेक्ट।
आप उसमें और कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपने जितना दिया उतना ही रखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा कम दें ताकि प्रॉफिट ज्यादा।
करेक्ट।
जिसमें आपने रहना है उसको आप जाके बीच में देखेंगे भी, सोचेंगे कि उसके आसपास कुछ पौधे भी लगा दें, उसकी इंटीरियर कैसी हो सकती है उसके बारे में प्लान करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका उससे एक रिश्ता जो है एक खुशनुमा रूप से जुड़ना शुरू हो जाएगा। जो रिलेशनशिप इस डर के साथ, जैसा कि आप कह रही थी, उनमें शुरुआत होती है, तो उसका बीज जो है वो यही होता है कि ये थोड़ी देर तक चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो हम छोड़ देंगे, या पहले देख लेते हैं। अब टेस्ट करने के कोई तरीके नहीं है कि वो रिलेशनशिप चलेगी कि नहीं चलेगी। आज अगर सिर्फ एक मुखौटे के रूप में हम एक दूसरे से इसलिए अच्छी तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि हम उसे धकेलना चाहते हैं या कम से कम उसमें कोई बुराई नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन बाद में जब वो मुखौटा उतरेगा, और जो कि आमतौर पे होता, जब वो उतरता है तो उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने आती है। अगर आपकी सच्चाई ही ये है कि आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति के साथ आप इतना कंफर्टेबल हैं कि जीवन जी सकते हैं, और अब दोनों के नज़रिए भी अलग होंगे ये भी समझ लें, और उन नज़रियों में शायद बाहर वाले लोग भी आएंगे, कुछ कहेंगे, मैं उन्हें कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ और जो कंपेनियन है उसे कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मैं किसकी बात को मानूंगा समझूंगा।
करेक्ट।
हम आमतौर पे बाकी लोग जो हैं या बाकी सर्कमस्टांसेस जो हैं, एक बार जब कोई रिलेशनशिप परमानेंट हो जाती है तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अब इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये हो गया, अब ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति है वो काम करे या जैसी है ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर उसके बाद हम उस रिलेशनशिप को हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं और इंसिडेंटली उसकी कोई इंतहा नहीं है, आप एज अ कंपेनियन भी, चाहे वो परमानेंट ना भी हो, इतना एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप हैं जिनके हमारे पास उदाहरण हैं, और अगर हम उनको देख के चले और कोशिश करें कि हमारी रिलेशनशिप उस लेवल तक बढ़ती जाए, तो रिलेशनशिप हम इसलिए नहीं ब्रेक करना चाहेंगे क्योंकि ब्रेक करने के बाद हम अपने जीवन में कंफर्टेबल नहीं होंगे। जहाँ पर हमें लगता है कि ये ब्रेक करके मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगा और दूसरा कोई व्यक्ति आएगा जो इससे बेहतर मेरी ज़िंदगी को बना देगा, फिर हम उस व्यक्ति की तलाश करनी शुरू कर देते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है उसकी कमियाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, दूसरे किसी इमेजिन्ड व्यक्ति की वेट करनी शुरू कर देते हैं, तो रिलेशनशिप को पानी देना तो हमने बंद कर दिया। वहाँ पर अगर हम सिर्फ ये सोच के चले कि कोई भी रिलेशनशिप वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे हम किसी से 5 मिनट के लिए मिले हैं, क्या उस समय में उस व्यक्ति के लिए मैं बेस्ट कर सकता हूँ, और फिर हिसाब किताब नहीं रखें। क्योंकि जब हिसाब किताब होना शुरू होता है तो हर रिलेशनशिप में कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम हो, चाहे वो व्यक्ति, ये भी हो सकता है कि वो भी हिसाब किताब किसी और से करके आया है, वो गिन रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या रही है, उसकी फैमिली क्या रही है, उन सब को अगर हम साइड पे कर दें और जो रिलेशनशिप हुआ है मेरी तरफ से वो खूबसूरत तरीके से मैंने कोशिश की, और अगर उसकी तरफ से भी आगे कुछ रिस्पॉन्स होती है तो आगे बढ़ती है, लेकिन कम से कम मैं उस चीज़ को अपने मन में ना रखूँ, मनमुटाव ना होने दूँ, तो चांसेस हैं कि आपकी रिलेशनशिप धीरे 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 ग्रो करती रहेगी। और जब वो ग्रो करेगी और उस ग्रोथ की वजह से आपको फ्यूचर में लगेगा कि हाँ अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो रिलेशनशिप खूबसूरत हो सकती है।
करेक्ट।
पुराने ज़माने की आपने जो बात की, देखिए पहली बात तो ये है कि टकराव जो थे वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आते थे।
अच्छा।
अभी जो है वो जो टकराव हैं वो टकराव पूरी तरह से फुल वॉल्यूम के साथ पूरे दुनिया को पता लगने शुरू हो जाते हैं, या कई बार हम इस तरह के शब्दों का, या कई बार उससे कुछ ज़्यादा भी
कुछ इल्ज़ाम लगा देना, ये भी
इल्ज़ाम लगा देना कहना शुरू कर देते हैं, जो कि परमानेंटली रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर सकता है।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक नया पहलू मैं जोड़ना चाहती हूँ। आजकल जिस तरह से लड़कियाँ भी काम करने लग गई हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन, तो जब दोनों ही एक पायदान पे होते हैं, कई बार लड़कियाँ उनसे ऊपर भी चली जाती हैं, शायद उनका पे पैकेज भी ज़्यादा हो, ये भी कहीं ना कहीं ईगो का उत्पादन करने लगता है कि किस तरह से एक वाइफ अगर एक हस्बैंड से ज़्यादा ऊपर है इन पोस्ट, तो ये भी इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है घर के अंदर में, और ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा कमाता है वो घर का बॉस इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि पहले ज़माने में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वुमेन दे यूज टू स्टे एट होम, वो घर में काम संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, लेकिन आज दोनों एक ही पायदान पर आ गए हैं, कुछ जगहों पर उससे ऊँचे भी चले गए हैं, तो क्या ये भी वन ऑफ द रीजंस है जिस वजह से ईगो क्रिएट होता है और ईगो के वजह से रिलेशनशिप्स खराब होती हैं?
देखिए, पे पैकेज डिसाइड करेगा कि कौन बॉस है तो फिर ये गेम पूरी जिंदगी चल सकती है,
क्योंकि ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि ऐसा होता नहीं है, मैंने आसपास लोगों को ये करते हुए देखा है, तब मुझे लगता है कि सच में, पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैं देख रही हूँ आसपास लोगों को इस तरह की सिचुएशन से डील करते हुए, और इनोसेंट होते हैं, दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसा प्ले कर रहा होता है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़रूरी नहीं है कि ये रीज़न सामने आए भी, रिश्ते टूट भी जाते हैं, लेकिन ये रीज़न सामने नहीं आता कि रियलिटी तो ये थी कि आप ज़्यादा कमाते हो मुझसे इसीलिए मैंने आपको छोड़ दिया, तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये इस पर फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए?
मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये रीज़न नहीं है ये हम डेफिनेटली देखते हैं, क्लिनिक्स में भी अपने देखते हैं, समाज में तो देखते ही हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर पे डिसाइड करेगी तो हो सकता है कल फिर आदमी की पे ज्यादा हो जाए.
करेक्ट.
तो फिर वो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा. फिर अगर उसकी लड़की की लॉटरी लग जाए.
करेक्ट.
तो और हो जाएगा. या उसको अपनी फैमिली से कुछ इनहेरिटेंस मिल जाए.
करेक्ट.
देखिए दोनों का एक रिश्ते में एक्चुअली पूरक होना ज्यादा जरूरी है. दोनों में से कौन सुपीरियर है एक्चुअली अगर देखा जाए तो जिस तरह के स्ट्रेसेस आज के समय में लोग ऑफिसेज में फेस कर रहे हैं और हर व्यक्ति अपने बॉस की बुराइयां करता है. घर में भी आपको एक और बॉस मिल जाए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. नोबडी वांट्स दैट. मोर इम्पोर्टेंटली जॉब समय के साथ बदल जाती है. लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं लेकिन फैमिली से रिटायरमेंट मैंने कभी नहीं सुनी. वो तो चलती रहेगी ना.
True.
और जॉब के अंदर आपकी पोजिशन बदलती है लेकिन फैमिली के अंदर जो पोजीशन आपकी एक पहले तो पति या पत्नी की फिर पेरेंट की फिर ग्रैंड पेरेंट की वो जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस ज़्यादा मीनिंग देती हैं आपके जीवन को.
ओके.
तो इसलिए उसमें इन्वेस्ट होना राइट फ्रॉम द बिगनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है.
करेक्ट.
कई बार जो पुराने हमारे मन के अंदर कुंठाएँ हैं या कई बार जो हमने बचपन में देखा अपने पेरेंट्स के साथ और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है
जी
अपने बच्चों को हम एक बहुत सशक्त और प्यार नुमा दें. बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टडीज़ आर नाउ शोइंग कि जो बचपन में हमने देखा जो इम्प्रेशंस हमारे दिमाग पर रहे वो ही एक तरह से बीज होते हैं जो बाद में जाके जीवन में कंफर्टेबल होना या अनकंफर्टेबल होना रिश्तों में अपने जीवन में कॉन्फिडेंस में मेंटल प्रॉब्लम्स में वो एक बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है.
करेक्ट.
और अगर फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और स्पेशली उसमें बच्चे भी हैं फैमिली में तो वो सिर्फ आपस का नहीं है वो हम नेक्स्ट जनरेशन को भी दे रहे हैं.
करेक्ट.
तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं किसी कारण से दो लोग इकट्ठे हुए हैं उन दो लोगों के बीच में एक रिश्ता हुआ है और वो रिश्ता जो है आपको मीनिंग भी दे सकता है और वो रिश्ता आपको बहुत कष्ट भी दे सकता है स्पेशली अगर आपस में मनमुटाव हो या बात और आगे बढ़े दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों कोर्ट कचहरी तक बात जाए और अगर ना भी जाए तो एक दूसरे के साथ हमेशा टेंशन के साथ जी रहे हैं गुस्से के साथ जी रहे हैं. तो अगर वो चीज़ को हम कुछ देर के लिए पहले तो साइड पे कर दें अगर पहुंच गए और अगर नहीं पहुंचे हैं तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जीवन का समझकर उसमें अगर हम थोड़ा समय थोड़ा एनर्जीज प्लस अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें ठीक करने की तरकीबें वो दो व्यक्ति आपस में डिस्कस कर सके ना भी कर सके तो भी आपका जितना रोल है उसको अच्छी प्रकार से अगर हम प्ले कर सकते हैं तो रिश्ता ज़रूर मजबूत होता रहता है.
बिल्कुल.
लेकिन अगर एक इनसिक्योरिटी के साथ अगर एक हाफ टेंटेटिव कि चलेगा तो देख लेंगे नहीं चलेगा तो चलो काटा मार के दूसरे में चले जाएंगे वो जो है वो किसी भी रिश्ते को नहीं चलने देता. वहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा स्पेशली यूथ के लिए
जी.
और वो है उनके पेरेंट्स की.
ओके.
हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है.
बिल्कुल.
ये सच्चाई है.
ट्रू.
लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं उस बच्चे की फैमिली के लिए अच्छा सोच. कई बार हम ये सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से अच्छे नग जो हैं वो देने की बात करते हैं और कई बार शादी कहाँ पे बेस्ट होनी है किस तरह की ड्रेस होनी है वो सब ज़्यादा सोचते हैं लेकिन गुणों का जो दान है वो उनको भी दें और खुद को भी दें ताकि किस तरह से एक नई शुरुआत अच्छे माहौल में शुरू हो सके और ग्रो हो सके. वहाँ पे सबका रोल है स्पेशली पेरेंट्स का भी यूथ का अपना तो है.
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब. बहुत सारी बातें जानी हमने बहुत सारे पहलुओं को जाना. कहीं ना कहीं हमने उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश की है जिन्हें आज तक हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो.
माय प्लेजर.
ओम शांति.
ओम शांति.
दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से यूथ्स के लिए अर्थात युवाओं के लिए उनके रिलेशनशिप्स कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। हमने जाना कि भले ही उन्हें बहुत सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना होता है, लेकिन उन सबको बेहतर बनाने का पूरा जिम्मेवारी उनके खुद के ऊपर होता है। हमने ये भी जाना कि अगर उन्हें एक रिश्ते को बेहतरीन करना है तो कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देकर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को थोड़ा नज़रअंदाज करते चले तो आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।